एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
दाता प्रभु यीशु तू ही है विश्व विधाता, मेरे राजा मन में आ जा, महिमा तू हमको अपने दिखा। हे जीवन के दाता प्रभु यीशु तू ही है विश्व विधाता, मेरे राजा मन में आ जा, महिमा तू हमको अपनी दिखा। दिखा। जीवन में अंधियारा है, आप प्रभु मदद करो।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
निकोदेमुस यीशु के साथ रात में मिलना। प्रिय श्रोतागण, आज मैं परमेश्वर का दास रॉबिन्सन कुजूर फिर से आपसे एक नए व्यक्ति के बारे में बतलाने चाहता हूँ, जिसका नाम है निकोदेमुस। यहूदी राज में निकोदेमुस एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय अधिकारी था। वह उच्च कोटि का विद्वान था और अति प्रभावशाली और चरित्रवान व्यक्ति भी था और राष्ट्रीय सभा का बहुत ही आदरणीय सदस्य था। दूसरे लोगों के साथ साथ वह भी यीशु की शिक्षा से अति प्रभावित था। यद्यपि वह धनवान, विद्वान और आदरणीय था, फिर भी उस विनम्र नासरी की ओर आकर्षित था, जो पाठ, जो शिक्षा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मुंह से निकले थे, वे उसे बहुत ही प्रभावित किए और उसने इच्छा की कि आश्चर्यजनक सच्चाई को और अधिक जाने। यीशु एक बार जब मंदिर गया था, लोगों को भेड़, कबूतर, पशुएं बेचते और खरीदते और पैसों की अदल बदल करते देखा। यीशु को मंदिर में ये सब होते सहा नहीं गया। उसका स्वर्गीय इच्छा था कि वह उस स्थान को सफाई करे, सो उन्होंने सोटे लिए और सभी को वहाँ से भगाने लगा और पैसे अदल बदल करने वालों के टेबल उलट दिए। मंदिर की सफाई के समय मसीह के अधिकारपूर्ण व्यवहार से याजकों और शासकों की घृणा को और बढ़ा दिया। इस अनजान व्यक्ति की शक्ति से वे डर गए। उनके अनुसार एक साधारण से गलीली के इस दुस्साहसपूर्ण कार्य को कभी सहन नहीं किया जा सकता और उन्होंने ठान लिया कि उसके कार्य का अंत कर देना होगा। परंतु सभी लोग इस बात पर एकमत नहीं थे। वहां पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर उसका विरोध करने में डर रहे थे। ऐसे विचार करने वालों में निकोदेमुस भी था। सन्हेड्रिन, जो वहां का लोकसभा था, उसमें जब यीशु के विषय को आगे बढ़ाने की चर्चा चल रही थी, निकोदेमुस ने सावधानी और मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी। उसने सभा से अनुरोध की कि यदि सचमुच में यीशु परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ अधिकारी है तो उसकी चेतावनी को रद्द कर देना खतरनाक हो सकता है। याजकों को साहस नहीं हुआ कि वे इस सलाह को अनदेखा कर दें और उस समय मुक्तिदाता के विरोध में कोई प्रकट रूप से निर्णय नहीं लिया गया। यीशु की शिक्षाओं को सुनने के बाद निकोदेमुस मसीह से संबंधित भविष्यवाणियों का व्याकुलता के साथ अध्ययन करने लगा। वह जितना ही अधिक खोजबीन करता, उतना ही अधिक प्रतीति करने लगता कि जिसके आने के लिए कहा गया है वह वही है। इसराइल में बहुतों के साथ वह भी मंदिर के धर्मभ्रष्ट आचरण से बहुत खिन्न था। जिस समय यीशु ने क्रय विक्रय करने वालों को वहां से भगाया था, उस समय निकोदेमस ने सब कुछ देखा था। उसने आश्चर्यजनक रूप से ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन देखा। उसने देखा कि उद्धारकर्ता गरीबों का किस प्रकार स्वागत करता और रोगियों को किस प्रकार चंगाई दे रहा है। उसने उनके प्रफुल्लित चेहरों को भी देखा और प्रशंसा तथा महिमा करते हुए शब्दों को सुना। उसे अब शंका नहीं रह गई थी कि यीशु नासरी परमेश्वर का भेजा हुआ है। उसकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि वह यीशु के साथ बातचीत करे, परंतु खुले रूप से उससे मिलने में सकुचा रहा था। यहूदियों के इतने बड़े शासक के लिए छोटे से अनजान शिक्षक से मिलना और सहानुभूति दिखाना स्वयं के लिए बड़ा अनादर था, और यदि पार्लियामेंट के लोगों को उसके जाने का ज्ञान हो गया तो वे धिक्कारेंगे तथा सार्वजनिक रूप से वर्तना करेंगे। उसने सोच लिया कि वह गुप्त रूप से मिलेगा और बहाना बनाया कि यदि वह खुले रूप में जाएगा तो हो सकता है कि दूसरे लोग भी उसका उदाहरण लेकर उससे मिलने चले जाएं। मुक्तिदाता मसीह के ठहरने के स्थान का पता लगाया कि वह जैतून के पर्वत पर विश्राम कर रहा है। प्रतीक्षा करने लगा कि जब नगर सो जाएगा तब वह यीशु से मिलने जाएगा। मसीह के सामने निकोदेमुस अपने आप को आश्चर्यजनक रूप से बावना अनुभव करने लगा। शांति और सम्मान के पर्दे में छिपाने का प्रयास करते हुए उसने कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। वह इस बात को समझा। मसीह को एक गुरु का संबोधन करते हुए और उसके आश्चर्यजनक सामर्थ्य द्वारा चमत्कार करने की प्रशंसा करते हुए उससे बातचीत करने की आशापूर्ण भूमिका बांधी। उसके अर्थपूर्ण शब्दों का संबोधन उसमें विश्वास करने का निमंत्रण था, परंतु वास्तव में वे अविश्वास प्रकट कर रहे थे। उसने यीशु को मसीहा नहीं माना था, परंतु केवल एक गुरु जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। उसके नमस्कार को स्वीकारने के बदले यीशु ने बोलने वाले की ओर ऐसे देखा जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। अपनी असीमित बुद्धि से उसने देखा कि सत्य को जानने के लिए वह उसके पास आया है। उसके आने का कारण वह जानता था। यह देखकर कि उसके सुनने वाले व्यक्ति के दिमाग में पहले से ही जो भावना बैठ गई है उसे और गहराई से समझाने के लिए सीधे मुख्य बात पर आकर बड़ी सलीनता और दया भाव से बोला, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता है। यह हम यहूना 3:3 में पाते हैं। हाँ मित्रों, निकोदेमस यह सोचकर प्रभु के पास आया था कि उससे तर्क वितर्क करेगा, परंतु यीशु ने सच्चाई के सिद्धांत को ही खोलकर उसके सामने रख दिया। उसने निकोदेमस से कहा कि आपको काल्पनिक अथवा शिक्षित ज्ञान की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी कि आत्मिक ज्ञान को सुधारने की आवश्यकता है। आपको अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक नए हृदय की आवश्यकता है। इससे पहले कि आप स्वर्गीय वस्तुओं की प्रशंसा करें, आपको नया जीवन प्राप्त करना आवश्यक है। निकोदेमस यहूना बपतिस्मा देने वाले के उपदेशों जैसे कि पश्चाताप करने और बपतिस्मा लेने के विषय को और लोगों की ओर संकेत करते हुए कहा था कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उसने स्वयं ने भी अनुभव किया था कि यहूदियों में आत्मिकता की घटी है। बहुत सीमा तक वे सांसारिक इच्छाएं और धर्मांधता के नियंत्रण में जी रहे हैं। उसने आशा लगा रखी थी कि मसीह के आ जाने से बहुत कुछ सुधर जाएगा। नए जन्म के विषय में जो शब्द यीशु ने प्रयोग किए थे उसे निकोदिमस अनजान नहीं था। अन्य जातियों में से जो लोग इसराइली विश्वास में परिवर्तित हो जाते थे उन्हें सामान्य रूप से नए जन्मे बच्चों की तुलना करते थे, इसलिए वह अवश्य ही समझ गया होगा कि मसीह के उन शब्दों का अर्थ वास्तविक नहीं है। परंतु एक इसराइली परिवार में जन्म लेने के वंशानुगत अधिकार के कारण उसे निश्चित विश्वास था कि वह परमेश्वर के राज्य में होगा, क्योंकि निकोदिमस इसराइल घराने से जन्मा हुआ था। उसको यह विश्वास था कि उसके लिए स्वर्ग का राज पक्का है, परंतु वह यह भूल कर रहा था। परंतु उद्धारकर्ता तर्क का उत्तर तर्क द्वारा नहीं दिया। बड़ी सलीनता के साथ अपने हाथों को ऊपर उठाकर बहुत शक्तिशाली पूर्ण और निश्चयता के साथ कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। निकोदिमस को मालूम था कि यहाँ पर मसीह पानी से बपतिस्मा लेने और परमेश्वर की आत्मा द्वारा हृदय परिवर्तन की बात कह रहा है। उसे निश्चय रूप से प्रतीति हो गई कि जिसके समक्ष वह उपस्थित है वह वही है जिसके विषय में यहूना ने कहा था। निकोदिमस अभी भी हैरान व परेशान था। यीशु ने हवा का उदाहरण देकर उसे समझाया, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हम नहीं जान सकते हैं कि आत्मा कब कैसे काम करता है, परंतु जब आत्मा काम करता है हम उसके असर को देख सकते हैं। पेड़ों की डालियों, पत्तों और फूलों के हिलने डुलने के रगड़ से हवा के शब्द तो सुनाई देते हैं परंतु फिर भी दिखाई नहीं देते, और कोई भी मनुष्य यह नहीं बता सकता कि हवा किधर से आती है और किधर जाती है। इसी प्रकार से हृदयों पर पवित्र आत्मा के कार्य हैं। मनुष्य के सीमित दिमाग से उद्धार के कार्य को समझना असंभव है। इसके रहस्य को समझना मनुष्य की बुद्धि से बाहर है। फिर भी जो व्यक्ति मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर गया है वह अनुभव करता है कि वास्तव में यह एक ईश्वरीय महिमा है। इस पृथ्वी पर उद्धार के आरंभ को व्यक्तिगत अनुभव से जान सकते हैं, परंतु इसका परिणाम अनंत काल तक के लिए है। निकोदिमस मसीह की ओर आकर्षित हो गया। जब मुक्तिदाता ने नए जन्म के विषय उसे समझाया तो उसमें इच्छा जाग उठी कि ऐसा परिवर्तन उसके जीवन में आए और उसके हृदय में आए, परंतु किस प्रकार से ऐसा हो सकता है। बिना पूछे ही यीशु ने उसके प्रश्न का उत्तर यह कहकर दिया, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। निकोदिमस इस आधार से परिचित था। सांप को ऊंचे पर टांगे जाने के प्रतीक ने उद्धारकर्ता के उद्देश्य को उसके सामने खोलकर रख दिया। जब निर्जन जंगल में इसराइली लोग जहरीले सांपों के डसने से मर रहे थे, तब परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया था कि पीतल का एक सांप बनाए और उसे सभा के बीच ऊंचे पर टांग दे। और तब यह बात पूरी छावनी में फैल गई कि जो उसे ऊंचे पर चढ़ाए हुए सांप को देखेगा वह जीवित रहेगा। लोग भली भांति जानते थे कि उस पीतल के सांप में कोई शक्ति नहीं है कि उनकी सहायता कर सके। यह मसीह के प्रति एक प्रतीक था। जिस प्रकार से इस जगत का सर्वनाश करने वाले सांप की आकृति बनाकर उनकी चंगाई के लिए ऊंचे उठाई गई थी, उसी प्रकार से वह पापमय शरीर की समानता में उनका उद्धार करने वाला होने को था। रोमियो 8:3 में पाते हैं, बहुत से इसराइली बलिदान की विधियों को ऐसा मानते थे कि उसमें यह योग्यता है कि उनके पापों से आजाद कर देंगे। परमेश्वर उन्हें यह सिखाना चाहता था कि पशुओं के बलिदान का महत्व पीतल के सांप से अधिक का नहीं है। यह तो लोगों के मनों को उद्धारकर्ता की ओर लगाने के लिए था, चाहे उनके घावों को भरने का हो, चाहे उनके पापों को क्षमा करने का हो। वे अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि परमेश्वर के वरदान में अपने विश्वास को दर्शाते हैं। उन्हें देखना था तथा जीवित रहना था। सांप को ऊपर चढ़ाए जाने की शिक्षा द्वारा निकोदिमस जैसे हजारों हजार लोगों को उस शिक्षा को ग्रहण करने की आवश्यकता है। वे लोग परमेश्वर की आज्ञा पालन द्वारा स्वयं पर निर्भर हैं कि परमेश्वर उनका साथ देगा। जब उनसे कहा जाता है कि यीशु की ओर ताके और विश्वास करें कि वह अपने अनुग्रह द्वारा पूर्ण रूप से बचाता है, तो उनका वही प्रश्न होता है, ऐसा क्यों कर हो सकता है। निकोदिमस के समान हमें उसी प्रकार से अपने आप को एक महान पापी स्वीकारते हुए जीवन में प्रवेश करना चाहिए। तब मसीह और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यह हम प्रेरितों के काम 4:12 पदस्थल में पाते हैं। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, परंतु विश्वास हमारा उद्धारकर्ता नहीं है। वह कुछ भी नहीं प्राप्त करता। यह वे हाथ हैं जिनके द्वारा हम मसीह को थामे रहते हैं और पाप की दवा के लिए उसके गुणों को अपने में समोते रहते हैं। बिना परमेश्वर की आत्मा की सहायता से हम पश्चाताप भी नहीं कर सकते। मसीह के लिए पवित्र शास्त्र कहता है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। प्रेरितों के काम 5:31। क्षमा की तरह ही पश्चाताप भी मसीह की ओर से आता है। तो हम किस प्रकार से बचाए जाएंगे? जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया गया था। और जो भी सांप द्वारा धोखा खाया या डसा गया है, वह उसे देखे और जीवित रहे। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, यूहन्ना 1:29 में हम पाते हैं। क्रूस से चमकता हुआ प्रकाश परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। उसका प्यार हमें अपनी ओर खींचता है। यदि हम इस खिंचाव का विरोध ना करें तो वह हमें क्रूस के चरणों तक पहुंचाने में अगुवाई करता है, ताकि हम विश्वास द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में एक नई जान फूंक देती है। इच्छाएं और विचार मसीह की इच्छा पूरी करने में प्रसन्नचित होते हैं। हृदय दिमाग उसकी शक्ल में ढलते जाते हैं, जो हम में होकर सभी कार्यों को अपने अधीन कर लेता है, और तब परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे हृदयों में और मस्तिष्कों में लिख दी जाती है, और हम मसीह के साथ कह सकते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है। भजन संहिता 40:8। परमेश्वर हमें आशीष दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान महान दयालु परमेश्वर पिता, हमें यीशु में विश्वास करने करके उद्धार पाने की योजना देने के लिए धन्यवाद। हमें यीशु में विश्वास के द्वारा बचा ले। हम में से बहुत से कोई निकोदिमस के समान है। हम दुनिया का ज्ञान रखते हैं, हम विद्वान भी हो सकते हैं, पर हमें उद्धार का ज्ञान चाहिए। हमें नम्र बना, हम तुझ में समर्पित होते हैं। तू हमें तेरा आत्मा के द्वारा यीशु के पास आने के लिए मदद कर, और तेरे द्वारा दिए गए उद्धार को अपनाने में मदद कर, हमारी मदद कर परमेश्वर पिता, और हमें तेरे रास्ता में चला, क्योंकि इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह तेरे प्यारे बेटे के नाम से मांगते हैं। आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान,
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।